प्रिय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 30 अक्टूबर 2019 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय में मैं आपसे पर्यावरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। यह टॉपिक बहुत वेल नोन नहीं है लेकिन अभी इस पर जितनी बातें हो रही हैं तो मुझे लगता है कि स्पेशली मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका कोई संबंध प्री एग्जामिनेशन से नहीं है, प्री एग्जामिनेशन से भी इसका उतना ही रिलेशन है। लेकिन मैं यहाँ प्री और मेंस की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में तो आप विकल्पों को देख करके थोड़े से अनुमान लगाने की स्थिति में होते हैं, लेकिन मेंस में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेंस में अगर आप चीज़ों को नहीं जान रहे हैं तो लिख करके आना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए मैंने प्री और मेंस की दोनों अलग अलग बातें की हैं। कुछ दिनों पहले आपने अखबार में पढ़ा होगा कि ग्लेशियर के पिघलने पर चर्चा होने लगी है और अभी अंटार्कटिका में ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा भाग जो लगभग 5080 वर्ग फीट किलोमीटर का है वह टूट कर अलग हो गया। ग्लेशियर यानी कि उसके जो उसका ओरिजिनल हिस्सा था उससे टूटकर अलग हो गया, यानी कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं ये अंटार्कटिका के क्षेत्र के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसको लेकर के सच पूछे तो पूरी दुनिया बहुत गंभीर रूप से चिंतित हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं और स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक जबरदस्त चुनौती बन चुकी है। यूएनओ में आपने देखा कि जब इस पर सम्मेलन हुआ था तो किस तरह से बातें हुई हैं और उसमें स्वीडन की एक लड़की ने जितने साहस के साथ और जोरदार तरीके से, आप यूं कह लीजिए कि विश्व नेताओं को एक हम कह सकते हैं कि लताड़ा, वह गौर करने लायक बात है। तो इससे साफ लग रहा है कि दुनिया का ध्यान अब इधर तो जा रहा है। तो इसमें मैं आज आपसे एंटार्कटिका में जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं लेकिन जो परमाणु हथियारों के परीक्षण के कारण पिघल रहे हैं उस पर बात करने जा रहा हूं। देखिए सामान्य तौर पर जब ग्लेशियर के पिघलने की बात आती है तो हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, यानी कि धरती का तापमान बढ़ रहा है और जब तापमान बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघलेगी। और ऐसा हो भी रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो केवल परमाणु परीक्षण के कारण ही पिघल रहा है, मतलब बकायदे रिसर्च में ये पाया गया है कि पिछले लगभग 40 सालों में जो बर्फ पिघली है, जो ग्लेशियर पिघले हैं, उससे जो विश्व में के स्तर पर जो समुद्र का ताप स्तर है, वैश्विक समुद्र का स्तर, वो लगभग आधे इंच से ज्यादा बढ़ गया है, आधे इंच से थोड़ा अधिक बढ़ गया है। इसका परिणाम क्या होगा? देखिए बहुत से ऐसे नगर हैं जो समुद्र के किनारे स्थित हैं, आइलैंड की संख्या जिसे आप द्वीप कहते हैं दुनिया में कम नहीं है। हालांकि आप जब सुन रहे हैं कि आधे इंच से थोड़ा ही अधिक बढ़ा है तो आपको लग रहा होगा कि उससे क्या फर्क पड़ता है। कल्पना करके देखिए कि अगर यही स्थिति बनी रही तो कभी ये आधा इंच एक इंच भी होगा, डेढ़ इंच होगा, और अगर इतना भी बढ़ गया तो मान करके चलिए कि समुद्र के तट पर स्थित नगर, जो बहुत बड़े बड़े नगर हैं, बहुत ही ऐतिहासिक नगर हैं, औद्योगिक नगर हैं, वो डूब जाएंगे और जो द्वीप हैं वो तो डूब ही जाएंगे। तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। चलिए इनके डूबने की तो बात अलग है लेकिन इसका जो प्रभाव है वो पूरे के पूरे जलवायु पर पड़ता है, पूरे के पूरे वातावरण पर पड़ता है। आपने अल नीनो एल नीनो के बारे में पढ़ा होगा। देखिए अल नीनो एल नीनो बेसिकली क्या है? सीधी सी बात है कि जो समुद्र का जो तापमान है वो किसी वजह से अपने नेचुरल तापमान से या तो कम हो जाता है या अधिक हो जाता है। तो जब समुद्र के पानी के तापमान में अंतर आता है तो सीधी सी बात है कि उस क्षेत्र में जो हवा का दबाव बनता है, हवा के दबाव में भी अंतर आ जाता है। जब हवा के दबाव में अंतर आता है तो सीधी सी बात है कि जो हवाओं का प्रवाह होना चाहिए, जो अभी तक होता रहा, एक पर्टिकुलर रूट पर जो हवाएं चलती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, या यूं कह लीजिए कि उनका मार्ग खंडित हो जाता है। जब मार्ग खंडित हो जाता है तो उसी नतीजे में हम कहीं बाढ़ देखते हैं, कहीं तूफान देखते हैं, कहीं हम सूखा देखते हैं, उसी के परिणाम है। तो दोस्तों आप कल्पना करके देखिए कि अगर अल नीनो एल नीनो जैसी घटनाएं इतने बड़े आपदा को जन्म दे सकती हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, भूगोल में आपने पढ़ा भी है कि जो हमारे अंटार्कटिका के जो क्षेत्र हैं वो बेसिकली एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि हमारे जो पूरा का पूरा जो पृथ्वी का वातावरण है उसको संतुलित करने वाला एक सिस्टम है। चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, उसका संतुलन बना करके रखना है। तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये दोनों ध्रुव, आप यूं कह लीजिए कि हमारे पृथ्वी का जो वेदर का साइकिल है, जो मौसम का चक्र है, उसका निर्धारण करते हैं। कल्पना करके देखिए कि जो हमारे पृथ्वी के मौसम के चक्र का निर्धारण करते हैं, यदि हम उसे ही डिस्टर्ब कर देंगे तो मौसम का क्या हाल होगा। और ये लगातार होता चला जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है या कोई काल्पनिक बात नहीं है, लगातार बहुत तेजी के साथ ये बढ़ता जा रहा है। अब आप देखिए कि प्रॉब्लम क्या हुई है। अब जो नए रिसर्च सामने आए हैं, अभी तक तो ग्लेशियर के पिघलने की बात जो की जाती थी वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण की जाती थी, और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के पूरी दुनिया चिंतित है कि कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस हैं, गैस हैं, उनका उत्पादन कम करें, उसको कैसे कम करते चले जाएं। कुछ समय पहले आपने एक और भी आर्टिकल पढ़ा होगा जिसमें यह कहा गया है कि जब तक हम भूमि का सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तब तक हम आप मीथेन गैस के उत्पादन को नहीं रोक सकते, क्योंकि भूमि मिट्टी एक ऐसा तत्व है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत जबरदस्त तरीके से सोखता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप उसे नेचुरल तरीके से रहने देंगे। अब हम उसे भी डिस्टर्ब करने लगे हैं, चाहे हम जंगल काट करके करें, चाहे हम उनमें रासायनिक खाद मिला करके करें, बाढ़ के कारण जमीन की जो मिट्टी है वो नदियों में चलती चली जा रही है, तो उसकी वो धारण करने की क्षमता है वो कम होती चली जा रही है। और यहां तक कि जो मिट्टी की जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जिसे वो रोक करके रखती थी वो भी उन्मुक्त हो रही है। तो इन सबके कारण लगातार ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रहा है, लेकिन अब एक उसमें एक नई चिंता जुड़ गई है, वो है अंटार्कटिका के ग्लेशियर का पिघलना। और इसके पिघलने के पीछे सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार नहीं है बल्कि जिम्मेदार हो गए हैं परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जाना। मैं रिपीट कर रहा हूं, परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जाना। चूंकि यह एक नई रिसर्च सामने आई है तो मुझे लगता है कि मेन एग्जामिनेशन के लिहाज से यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है। हुआ क्या है कि अमेरिका ने 1946 और 1962 के बीच जो पैसिफिक प्रोविंग ग्राउंड्स हैं, ये पूरा का पूरा जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, उसमें परमाणु परीक्षण किए थे। आपको इससे पहले मालूम है कि 1942 में किस तरीके से, आपको मालूम है कि इससे पहले जब जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे तो उस परमाणु बम से जो रेडियो एक्टिविटीज जो जनरेट हुई थी उसका कितना दुष्प्रभाव जापान पर पड़ा है, इसके बारे में आप पढ़ते भी आ रहे हैं लगातार। तो अमेरिका के पास ये अनुभव था कि ये जो परमाणु बम है ये कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो उस हिरोशिमा के उदाहरण को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने ये क्लियर कर लिया कि वो अगर परमाणु अस्त्रों का परीक्षण करेगा तो ऐसे क्षेत्रों में करेगा जिससे उसके अपने देश को नुकसान ना पहुंचे। तो इसके लिए आप ऐसे ही क्षेत्र चुनते हैं जहां पर आबादी न हो, चाहे वो रेगिस्तान का एरिया हो, चाहे फिर अंटार्कटिका जैसे क्षेत्र हो, प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र हो जहां पॉपुलेशन नहीं है। तो अमेरिका ने सन 2000 के आसपास ही बिल्कुल ये घोषित कर लिया, अपनी नीति बना ली कि वो न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट अब अपने देश में नहीं बनाएगा। तो उसने अपने ढंग से ठीक है समझदारी की, लेकिन दुनिया का क्या हुआ। अब आप देखिए कि जब प्रशांत महासागर में अमेरिका ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया तो उसमें से कुछ रेडियोधर्मी तरंगें निकली। जब रेडियोधर्मी तरंगें निकली तो वो चारों तरफ फैलने लगी और धीरे 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 ये तरंगें अंटार्कटिका महासागर में जो बर्फ जमी हुई थी, उस बर्फ यानी कि जो ग्लेशियर थे, उन ग्लेशियर तक पहुंच करके और चादरों के रूप में जमा हो गई। ये रेडियो एक्टिव गैसें थी, ये गैस चादरों की तरह जमा हो गई और ये जो वेव्स हैं वो वहां अभी भी मौजूद हैं, वेव्स अभी भी मौजूद हैं। और इन्हीं वेव्स के कारण, या यूं कह लीजिए कि ये जो तरंगे फैली हुई हैं इसके कारण जो बर्फ की चादरें हैं जिन्हें हम ग्लेशियर कह रहे हैं वो पिघल रही हैं, या यूं कह लीजिए कि ये जो एक्टिव जो वेव्स हैं, रेडियो एक्टिव वेव्स, ये वहां के ग्लेशियर को पिघलने के लिए मजबूर कर रही हैं। और यह रिसर्च अभी अभी जो जियो फिजिकल रिसर्च जनरल है उसमें एक रिसर्च में यह स्पष्ट हुआ है, इसकी डिटेल रिपोर्ट आई है। और खासकर जो वैज्ञानिक हैं इसके पीछे उनका नाम है मेलेनी बारोनी, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं मेलेनी बारोनी। अब संकट यह है कि क्या किया जाए, क्योंकि परमाणु परीक्षण जो किए जा चुके हैं, अब आप देखिए कि कहां 1946 और 1962 के बीच के परीक्षण की हम बात कर रहे हैं, 70 साल पहले का जो परीक्षण हुआ है, मोर आर लेस आप कह लीजिए। अब क्या किया जा सकता है, अब जो है सो है। अब किया केवल यही जा सकता है कि भविष्य के लिए हम सतर्क हो जाएं कि इस तरह के परमाणु परीक्षणों से बचें। लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि परमाणु अस्त्रों पर इतने निषेध संबंधी संधियों के होने के बावजूद अभी इनके परीक्षण कम नहीं हो रहे हैं। और इसमें जो उत्तरी कोरिया है उनकी उसकी गतिविधियों से तो आप बहुत अच्छे तरह से वाकिफ हैं कि जब भी मर्जी होती है वो कोई ना कोई अस्त्र का परीक्षण कर देता है। और जब आप इस तरह के काम करते हैं तो जो रेडियो एक्टिव जो वेव्स हैं वो आपके अपने राष्ट्र की सीमा तक सीमित नहीं रहती हैं, वो ब्रह्मांड में चली जाती हैं, वो घूमती रहती हैं। और मुश्किल बात यह है कि आसानी से ये नष्ट नहीं होती। आप कह लीजिए कि कहीं ना कहीं ये पॉलीथिन की तरह है, प्लास्टिक की तरह है, जो फिर जिसे समाप्त करना उतना आसान नहीं रह जाता। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा संकट एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गया है। और ये माना जा रहा है कि अभी जो आइसबर्ग टूटकर अलग हुआ है, अभी जिसको लेकर के अभी दुनिया बहुत चिंतित हो गई है, उससे लगभग लगभग समुद्र का जो जल स्तर है वो 10 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। और आप कल्पना करके देखिए कि अगर ऐसा हुआ तो इनफैक्ट सच में क्या स्थिति होगी। तो दोस्तों, बस ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है, जनरल स्टडीज के लिहाज से इतनी ही जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की मुझे नहीं लगता कि आपको थोड़ी भी आवश्यकता है। इसके केवल मेन मेन पॉइंट्स को आप नोट कर लें कि कहां अमेरिका ने परीक्षण किया था, फिर किस तरीके से रेडियो एक्टिव जो तरंगे हैं वो निकली और किस तरीके से वो बर्फ के चादरों पर फैल करके अब गर्मी पैदा करके उसे पिघला रही हैं और इसके कारण जल स्तर कितना बढ़ जाएगा और उसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा अगर हम दोनों अपने जो साउथ और नॉर्थ पोल हैं उनके नेचुरल एटमोसफियर को डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। तो दोस्तों, अब मैं इस विषय को यहीं समाप्त करता हूं। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रहे हैं, वो सब आप अपने अपने हिसाब से देख लेंगे। अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।